एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो आपको सच में बेचैन कर देगी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक जासूसी उपन्यास की तरह शुरू होती है, पर अंदर से इतिहास का एक ऐसा जख्म है जो आज तक भर नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं पर्सिवल एवरेट के 2021 के उपन्यास द ट्रीज की।
हाँ, और पर्सिवल एवरेट मतलब वो कोई आम लेखक है ही नहीं, वो अमेरिकी साहित्य की एक ऐसी आवाज है जो कभी आसान रास्ते नहीं चुनते। उनकी लेखनी में आपको व्यंग मिलेगा, गुस्सा मिलेगा और समाज के पाखंड पर एक सीधा हमला।
बिल्कुल सही कहा। वो किसी एक शैली या जॉनर में बंधकर नहीं लिखते, और द ट्रीज तो शायद उनका सबसे शक्तिशाली काम है। ये किताब 2021 में आई जब अमेरिका में नस्लीय न्याय को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। तो ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अपने समय की एक धड़कन है। चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत तो इसकी एक मर्डर मिस्ट्री जैसी ही लगती है ना?
हाँ बिल्कुल, एक क्लासिक जासूसी कहानी की तरह। उपन्यास हमें ले जाता है मनी, मिसिसिपी, एक छोटा गुमनाम सा कस्बा जिसे दुनिया लगभग भुला चुकी है, पर इतिहास की किताबों में इस जगह का नाम एक बहुत ही काले अध्याय से जुड़ा है।
आप एमिट टिल की बात कर रहे हैं?
हाँ, 1955 में यहीं पर एमिट टिल नाम के 14 साल के एक अश्वेत लड़के की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया था।
और नागरिक अधिकार आंदोलन की चिंगारी भी वहीं से।
बिल्कुल, वहीं से। और एवरेट कहानी के लिए ठीक वही जमीन चुनते हैं जहां अतीत की गूंज आज भी मौजूद है।
और इसी जमीन पर आज के समय में एक कत्ल होता है,
एक बहुत ही विभत्स कत्ल। जूनियर सी ली नाम के एक श्वेत आदमी की हत्या हो जाती है, लेकिन अजीब बात कत्ल नहीं बल्कि घटनास्थल है।
अच्छा।
उस आदमी की लाश के पास एक और लाश मिलती है, एक अनजान अश्वेत आदमी की।
हाँ।
और उस अश्वेत आदमी के हाथ में जूनियर सी ली के कटे हुए अंडकोश होते हैं।
ओह, ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्थानीय पुलिस के लिए तो ये किसी पहेली से कम नहीं होगा।
पहेली तो तब और उलझ जाती है जब वो उस अश्वेत आदमी की लाश को मुर्गा घर ले जाते हैं और वो वहां से गायब हो जाती है।
गायब हो जाती है? मतलब कैसे?
बस गायब, हवा में जैसे। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। और फिर कुछ ही दिनों बाद एक और श्वेत व्यक्ति वीट ब्रायंट ठीक उसी तरह से मारा जाता है।
हाँ।
और घटनास्थल पर
वही अश्वेत लाश।
हाँ, वही लाश फिर से मौजूद है और फिर से गायब हो जाती है।
तो यहाँ आकर कहानी का फोकस पूरी तरह बदल जाता है। मतलब ये कौन कर रहा है से ज्यादा जरूरी सवाल ये बन जाता है कि ये हो क्या रहा है। ये कोई आम सीरियल किलर तो नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं। और यहीं पर जांचकर्ताओं को एक दहलमा देने वाला कनेक्शन मिलता है। मारे गए दोनों श्वेत आदमी वो उन हत्यारों के रिश्तेदार थे जिन्होंने 1955 में एमिट टिल को मारा था। अब ये महज एक कत्ल का मामला नहीं रहता, ये इतिहास का बदला लगता है। सवाल ये है कि क्या ये किसी इंसान का काम है या उन हजारों पीड़ितों की आत्माएं हिसाब बराबर करने लौट आई हैं?
और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर बाहर से जासूस आते हैं, एड मॉर्गन और जिम डेविस। और मजे की बात यह है कि वो दोनों ही अश्वेत हैं।
हाँ, और उन्हें भेजा गया है मिसिसिपी के एक ऐसे इलाके में जो आज भी नस्लवाद में जकड़ा हुआ है। तो वो वहां सिर्फ जासूस नहीं है, वो हर तरह से बाहरी हैं। एड मॉर्गन एक अनुभवी थोड़ा थकावा सा जासूस है और जिम डेविस युवा है, आदर्शवादी। वो एक अपराध सुलझाने आते हैं पर अनजाने में इतिहास के एक ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंच जाते हैं।
लेकिन अगर सच कहूं तो कहानी का असली दिल ये दोनों जासूस नहीं है ना, कहानी की धड़कन तो कोई और ही है।
बिल्कुल, कहानी का नैतिक केंद्र तो एक 105 साल की महिला है, गर्ट्रूड, जिन्हें सब प्यार से मामा जीड कहते हैं। वो इस शहर की जीती जागती याददाश्त है, एक ऐसी औरत जिसने अपनी आंखों से एक सदी का इतिहास देखा है।
और सिर्फ देखा नहीं, उसे दर्ज भी किया है। उनका काम तो अविश्वसनीय है।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम किया है, अमेरिका में हुई हर एक लिंचिंग का रिकॉर्ड बनाना। लिंचिंग यानी जब भीड़ कानून को हाथ में लेकर किसी की पीट पीट कर हत्या कर देती है। मामा जीड के पास फाइलों से भरे हजारों बक्से हैं, जिन्हें वो द ट्रीज कहती हैं। इन बक्सों में हर पीड़ित का नाम है और हर अपराधी का नाम भी।
मतलब उन्होंने देश के उस शर्मनाक इतिहास का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर रखा है जिसे सब भुलाना चाहते हैं।
वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो प्रतिरोध का प्रतीक है।
हाँ, उनका मानना है कि जब तक हर नाम याद नहीं रखा जाएगा, न्याय अधूरा है। और यही फाइलें इस कहानी को मनी मिसिसिपी से निकालकर एक राष्ट्रीय भूचाल में बदल देती हैं, क्योंकि ये हत्याएं अब सिर्फ मनी में नहीं हो रही।
निशाना वही लोग बन रहे हैं जिनके पूर्वजों के नाम मामा जेड की फाइलों में हैं।
कहानी का टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब जासूस मामा जेड से मिलते हैं।
हाँ, वो उन्हें अपने उस गुप्त संग्रह तक ले जाती हैं। जब जासूस उन हजारों फाइलों को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सिर्फ फाइलें नहीं है, ये उस अलौकिक ताकत की किल लिस्ट है।
और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, ये फाइलें लीक हो जाती हैं। और इंटरनेट के इस दौर में वो जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। अचानक देश भर के अश्वेत लोगों के हाथ में उन लोगों की लिस्ट आ जाती है जिनके पुरखों ने उनके लोगों पर जुल्म किए थे। और इसके बाद जो होता है वो देश को गृहयुद्ध के कगार पर ले आता है।
लोग अब उस अलौकिक शक्ति का इंतजार नहीं कर रहे, नहीं, वो खुद ही इंसाफ करने निकल पड़ते हैं। नकलची हत्याओं की जैसे बाढ़ आ जाती है।
तो जो एक छोटे से शहर में एक रहस्यमयी बदला था, वो अब एक राष्ट्रीय विद्रोह बन चुका है। ये दिखाता है कि दबावा गुस्सा जब फटता है तो क्या होता है।
तो चलिए अब इस कहानी के गहरे संदेशों पर बात करते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा विषय है वो है ऐतिहासिक आघात का। ये जो बार बार लौट कर आने वाला शव है, ये असल में क्या है?
ये उस सच्चाई का प्रतीक है जिसे दफनाया नहीं जा सकता। आप उस पर कितनी भी मिट्टी डाल दें, वो बाहर आ ही जाएगी। उपन्यास यही कहता है कि अतीत कभी मरता नहीं, खासकर वो अतीत जिसके साथ इंसाफ न हुआ हो। वो अपना हिसाब मांगने जरूर लौटता है। ये शव वही अनदफन अतीत है।
और यहीं से दूसरा बड़ा सवाल उठता है, न्याय और प्रतिशोध का। यह किताब अमेरिकी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है। वो सिस्टम जो सदियों तक लिंचिंग करने वालों को बचाता रहा, तो उपन्यास ही असहज सवाल पूछता है कि जब कानून और अदालतें नाकाम हो जाएं, तो क्या हिंसक बदला ही न्याय का एक रूप बन जाता है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और किताब इसका कोई आसान जवाब नहीं देती। वो बस उस गुस्से को, उस पीड़ा को पाठक के सामने रख देती है जिससे ये बदला पैदा हुआ है। यह हमें मजबूर करती है कि हम उस असहजता का सामना करें। जब लिंचिंग करने वालों के वंशज मारे जाते हैं, तो एक पाठक के तौर पर शायद हमें एक पल के लिए संतुष्टि महसूस हो, और यही एहसास परेशान करने वाला है। और तीसरा विषय है स्मरण की शक्ति। मामा जेड का उन नामों को दर्ज करना सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश के खिलाफ एक जंग है।
बिल्कुल।
और प्रतीकों का इस्तेमाल भी कमाल का है। उपन्यास का शीर्षक ही द ट्रीज, पेड़। पेड़ जो जीवन का प्रतीक है, अमेरिका के इतिहास में लिंचिंग के सबसे भयानक स्थल भी रहे हैं। एवरेट एक ही साथ उस सुंदरता और उस क्रूरता को हमारे सामने रखते हैं। ये पेड़ अमेरिका के नस्ली इतिहास की गहरी अंधेरी जड़ों का प्रतीक है।
और वो गायब होता शव, उसे बाद में एक नाम भी दिया जाता है, डिमिंथ्रूफ। ये द डैम ट्रूथ यानी कमबख्त सच पर एक मजेदार और तीखा व्यंग है। वो सच जिसे कोई देखना नहीं चाहता, पर वो बार बार सामने आके खड़ा हो जाता है।
इस किताब को जो चीज इतना खास बनाती है वो है एवरेट की लिखने की शैली। वो किसी एक जॉनरा में नहीं बंधते। ये एक ही साथ जासूसी नॉयर है, सदन गॉथिक का माहौल है, और इन सब के ऊपर अलौकिक हॉरर और तीखे व्यंग का तड़का।
और उनका जो काला हास्य है वो तो कमाल है। वो नस्लवाद की बेवकूफी को दिखाने के लिए क्रूर मजाक का इस्तेमाल करते हैं। एक सीन है जहां कूक्लक्स क्लान के सदस्य एक रैली में आपस में ही लड़ पड़ते हैं और गलती से एक दूसरे को ही गोली मार देते हैं।
ये एक ऐसा सीन है जहां आप हंसते भी हैं और आपको अपनी हंसी पर शर्म भी आती है। ये हास्य कहानी की भयावहता को कम नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा कर देता है।
अंत में द ट्रीज को पढ़ना एक ऐसा अनुभव है जो आपको हिलाकर रख देगा, या आपको हंसाएगा, गुस्सा दिलाएगा और गहरा दुख भी देगा। ये ऐतिहासिक आघात जैसी एक किताबी अवधारणा को एक जीता जागता डरावना रूप दे देता है।
ये कोई आसान किताब नहीं है जिसे आप पढ़ के आराम से सो जाएं, लेकिन यह एक जरूरी किताब है। एक ऐसी किताब जो हमें अपने इतिहास पर और न्याय की हमारी समझ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है।
तो अंत में ये उपन्यास हमें यही याद दिलाता है कि जिस इतिहास को हम दफनाने की कोशिश करते हैं वो कभी मरता नहीं।
बिल्कुल। बल्कि वो और भी भयानक रूप में न्याय मांगने के लिए लौट आता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनोखी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।